श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और अब तक हमने अध्याय 10 का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 11 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट बैठकर आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार के शैतान के छल प्रपंच से, हर एक प्रकार के दुष्टता की बातों से आप उन्हें बचाएं, उन्हें अपने प्रेम में बढ़ाएं। जो भाई बहन इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, पिताजी आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन को आप स्पर्श करें, उन्हें छुएं और चंगाई दें, ताकि वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से तंदुरुस्त होकर आपके नाम की महिमा करने पाएं। आज के वचन के द्वारा हम सबों से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम जकरयाह नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इसराइल ऐसा आनंदित होगा जैसा दाख मधु से आनंद मिलता है। परमेश्वर उन्हें कोने कोने से एकत्र करेगा और वे बुद्धिमान होंगे, यद्यपि वे अभी परदेशों में होंगे तो भी वे यहोवा को स्मरण करेंगे और परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश ले आएगा, तब उनकी जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वे अपने देश में समा ना पाएंगे। तब ना मिस्र की प्रभुता रहेगी और ना अशूरों की। वे यहोवा के नाम से चलेंगे और फिरेंगे और अति प्रतापी होंगे। यह यहोवा का वचन है जो पूरा होगा। तो मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए जकरयाह नबी की पुस्तक अध्याय 11 में आते हैं, और इस अध्याय का विषय है प्रथम आगमन पर प्रभु यीशु को राजा स्वीकार नहीं किया गया था। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु और मूर्ख चरवाहा ख्रिस्त विरोधी है। इस अध्याय के साथ भारी वचन का भाग समाप्त हो जाएगा, जो प्रभु यीशु के प्रथम आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां हैं। इसके साथ ही हम रोमी युग में प्रवेश करते हैं। यह समय भी मकाबियों के युग के समान अंधकार का समय था। जैसा हमने देखा है कि जकरयाह आशावादी भविष्यद्वक्ता था, उसके नाम का अर्थ भी ऐसा ही है, परमेश्वर स्मरण रखता है। यह बड़ी रोचक बात है कि पुराने नियम में परमेश्वर का नाम पुकारने वाली उसकी अंतिम वाणी थी, और नए नियम में जिस पहले मनुष्य को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, उसका नाम भी जकरयाह ही था। जी हाँ, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। यूहन्ना प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने वाला था। देखिए, परमेश्वर अपनी प्रजा को स्मरण रखता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। जकरयाह आशा का ही नहीं, सत्य का भी भविष्यद्वक्ता था। आशा का भविष्यद्वक्ता मात्र होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आशा झूठी भी हो सकती है। जैसी झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे, निसंदेह उन्हें कुछ समय समृद्धि का मिला, परंतु पश्चिम दिशा से विश्व विजेता शीघ्र ही आने वाले थे, सिकंदर महान, और उसके बाद रोम। इसका अर्थ था इसराइल के कष्ट का समय। जी हां, इस अध्याय में अपनी भेड़ों के लिए जान देने वाले अच्छे चरवाहे का भी उल्लेख किया गया है। यहां एक और चरवाहे का उल्लेख किया गया है जो भेड़ों को फाड़ डालेगा, उसकी हत्या करेगा। यह और कोई नहीं, ख्रिस्त विरोधी है, मसीही विरोधी है, जो दूर भविष्य में आएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे मसीह के इनकार का दंड। जकरिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। मेरे प्रियो, यह पद आशाजनक नहीं है। इसमें जकरिया के बाद इसराइल का तीतर बीतर होना दर्शाया गया है। यह समय रोमी साम्राज्य का था। रोमियों की रणनीति भी सिकंदर महान के समान थी। वे उत्तर दिशा से आए थे। लबानोन में बेरूत के ऊपर एक नदी है। वहां समुद्री गुफा पर पहाड़ों में लिखा है, संसार की सब जातियों के नामों की सूची। वहां से निकलने वाले हर एक महान राष्ट्र के सेना नायक ने वहां चट्टानों पर अपने नाम लिख दिए थे। सब महान सेना नायक उस मार्ग से आए थे क्योंकि वह उत्तरी अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। गलील सागर, यर्दन नदी, मृत सागर आदि सब उस महान घाटी के भाग हैं। अतः जकरिया यहां आने वाले विजेता की चर्चा कर रहा है। कहता है, हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। लबानोन के देवदार वृक्ष प्रसिद्ध थे। सुलेमान का मंदिर और राजमहल का अधिकांश भाग इन देवदार वृक्षों की लकड़ी से बना हुआ था। आज तो बहुत ही कम देवदार दिखाई देते हैं। वे बर्फीले क्षेत्र में बहुत अच्छे उगते हैं। लबानोन का अर्थ ही श्वेत या बर्फीला है। यह नाम वहां के बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण पड़ा है। यह घाटी प्राचीन काल के विजेताओं के प्रवेश का एक सुगम मार्ग था। मिस्र, बेबीलोन, मादी, फारसी, सीरिया, यूनान और जैसा मेरा विचार है, जकरिया रोम के प्रवेश का उल्लेख करता है। जकरिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय के 2 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे सनावरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। यहां पर वह कहता है, हे सनावरों, हाय हाय करो। बाशान इसराइल के उत्तरी क्षेत्र में था। उस देश में अनेक सनोवर वृक्ष थे। हमारे यहां इसे शाहबलूत कहते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक 11 उसके 3 पद में आगे लिखा हुआ है, चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है क्योंकि यर्दन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है। ये चरवाहे झूठे अगुए थे जो प्रजा को पथ भ्रष्ट कर रहे थे और झूठी सुरक्षा का दावा करते थे। लिखा है, जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है। ये संभवतः युवा राजकुमार हैं। आगे जकरिया कहता है 11 अध्याय के 4 पद में, मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। ध्यान दीजिए, कहता है, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। यह एक भयावह बात है क्योंकि भेड़ बकरियां स्वदेश लौटे इसराइली थे। वे लौट कर क्यों आए थे? यद्यपि इस समय वहां समृद्धि थी, एक भावी विजेता आएगा और उनके कष्टों का समय आरंभ होगा। जकरिया 11 उसके 5 पद में लिखा हुआ है, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यह रोमी राज में उनकी दुर्दशा का कैसा उचित पूर्व चित्रण है। कि वे किस प्रकार अपने जीवन को जिएंगे। जकरिया 11 के 6 पद में आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश का नाश करेंगे और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से न छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि वह इसे अनुमति देगा क्योंकि उन्होंने उससे मुंह ही नहीं मोड़ा, उन्होंने भावी मसीह का भी इनकार किया है। तब जकरिया आगे कहता है 11 के 7 पद में, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरे का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। कहता है, मैं घात होने वाले भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। यहां टीकाकारों में मतभेद है, क्या जकरिया इस समय भेड़ें चरा रहा था, क्या यह एक दृष्टांत था या यह वास्तव में भेड़ चराने वाला बन गया था या वह वास्तव में भेड़ें चरा रहा था। मेरा अपना विचार है कि वह अभिनय कर रहा था जैसा भविष्यद्वक्ता प्रायः करते थे। आप यहेजकेल का अभिनय स्मरण करेंगे कि उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, फिर खोदकर सड़क पर निकला था। आज तो सड़कें खोदना एक आम बात है, परंतु यहेजकेल के युग में ऐसा नहीं होता था। परंतु खर में से जमीन खोदकर निकलना तो आज भी एक विचित्र बात है। वहां भीड़ एकत्र हो गई थी और यहेजकेल ने उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाया। मेरे विचार में जकरिया ने भी ऐसा ही अभिनय किया और भीड़ एकत्र कर ली। तब वह कहता है, मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम उसने अनुग्रह रखा। यह चरवाहे की लाठी थी जिससे चरवाहे भेड़ों को भटकने से रोकते थे। दूसरी का नाम उसने एकता रखा। इसका मूल अर्थ है वाचा। यह सोंटा होता था जिससे चरवाहा जंगली जानवरों को भगाता था। अतः जकरिया के पास एक लाठी थी अनुग्रह और एक सोंटा था जिसका अर्थ था वाचा। तब वह आगे कहता है, इनको लिए हुए मैं भेड़ बकरियों को चराने लगा। मेरे मित्रों, मेरे विचार में वह वास्तव में ऐसा कर रहा था। जकरिया 11 उसके 8 पद में आगे लिखा है, मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थीं। लिखा है, मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नष्ट कर दिया था। ये शायद झूठे भविष्यद्वक्ता थे। तब वह आगे कहता है जकरिया 11 उसके 9 पद में, तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे और जो नष्ट हो वह नष्ट हो और जो बची रहें वे एक दूसरे का मांस खाएं। मेरे विचार में वह झूठे भविष्यद्वक्ताओं और इसराइलियों द्वारा लाए जाने वाले बलि के पशुओं के विषय में कह रहा है। मलाकी में हम देखते हैं कि उस समय के कुछ लोग आवश्यकता से अधिक कंजूस थे और दशमांश भी नहीं दे रहे थे। वे बलि चढ़ाने के लिए अपने पशु भी नहीं ला रहे थे। यदि किसी का पशु मरने पर होता था तो वह उसे तुरंत बलि के लिए ले आता था और सोचता था कि उसने बलि चढ़ाकर परमेश्वर पर एहसान कर दिया है। परमेश्वर को ऐसा बलिदान स्वीकार नहीं है। तुम में से जो मरे वह मरे, अर्थात उसे बलि चढ़ाने में शीघ्रता मत करो, जकरिया उन्हें सत्य निष्ठा और व्यवहार में साफ सुथरे आचार की पुकार देता है ताकि वे अच्छा आचरण कर सकें। जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय के 10 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। ध्यान दीजिए, फिर वह आगे कहता है कि मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह रखा था। इसका अर्थ था कि परमेश्वर अपना अनुग्रह रोक लेगा। प्रतिज्ञा के देश में लाने पर परमेश्वर ने उनसे बैरियों से सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर स्वदेश लौटे हुए इसराइलियों को अनुग्रह प्रदान कर रहा था। अध्याय 10 के 6 में परमेश्वर ने कहा, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, मुझे उस पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। परमेश्वर उन पर ऐसा अनुग्रह इसलिए नहीं करेगा कि वे इस योग्य हैं या वे परमेश्वर का आज्ञाकारी हैं, वे तो सदा ही उसकी आज्ञाओं को तोड़ते रहे हैं, परंतु परमेश्वर उन पर दया करेगा। तथापि एक समय उसकी दया का अंत होगा और वह अपनी वाचा से हाथ खींच लेगा और उस समय वह उन पर दया नहीं दिखाएगा, वह उन पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करेगा। लिखा है कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसको तोड़ूं। परमेश्वर ने तो बार बार यही कहा है कि वह अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ेगा, तो यहां वाचा तोड़ने से उसका अभिप्राय क्या है? जी हां, हमें शर्त रहित और शर्त निहित वाचा में अंतर देखना है। परमेश्वर ने जो वाचा शर्त रहित बांधी है उन्हें वह कभी नहीं तोड़ता है, परंतु जिन वाचाओं में शर्तें हैं उनकी ओर परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे हैं। इस पद में जिस वाचा का उल्लेख किया गया है वह शर्तों पर आधारित है। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी कि वह उन्हें बैरियों से सुरक्षित रखेगा, परंतु उसकी शर्त थी कि वे उसकी आज्ञाएं माने, आज्ञाओं का पालन करें। आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर परमेश्वर उन पर से अपनी रक्षा का हाथ उठा लेगा, अर्थात वह अपनी वाचा तोड़ेगा। मेरे मित्रों, इसका एक उदाहरण नए नियम में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 14 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यह शर्तों पर आधारित वाचा है। डॉक्टर हेरी आयरन साइट एक बार किसी युवा प्रचारक के साथ मंच पर बैठे थे कि एक युवती वहां आई। उस युवा प्रचारक ने उन्हें बताया कि एक समय वह कलीसिया में सक्रिय थी, परंतु फिर वह सांसारिकता में लग गई। महीनों बाद उसे उन्होंने कलीसियाई सभा में देखा है। उस दिन डॉक्टर आयरनसाइड ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 14 पद पर उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद वह महिला कुपित हो उनके पास आकर कहने लगी, आप कैसे कह सकते हैं या आप कैसे कह रहे हैं कि यदि हम प्रभु यीशु के नाम से कुछ मांगेंगे तो वह हमें देगा। डॉक्टर आयरनसाइड ने उससे कहा, आप कृपया बैठकर मुझे अपनी बात ठीक से बताएं। उसने कहा, मेरे पिता बहुत बीमार थे और मैंने प्रभु यीशु से उनकी आरोग्यता चंगाई की प्रार्थना की और उसकी इस प्रतिज्ञा का स्मरण करवाया, परंतु वह मर गए। क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है? डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा, आपने इससे आगे नहीं पढ़ा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तब उन्होंने उससे पूछा, यदि आप किसी और का पैसा झूठे दस्तखत के द्वारा निकालें तो क्या होगा? उसने कहा, मैं धोखाधड़ी में फंसूंगी। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या आप प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानती हैं? उसका चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी प्रार्थना उस समय झूठे दस्तखत करने के समान थी। मेरे मित्रों, हमें यह बोध होना है कि प्रभु यीशु की आज्ञाएं मानना उसके प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण है, यदि प्रतिज्ञा उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं, तो वह आपके लिए भी है। यह हम सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात को जाने कि आपको भी उसकी आज्ञाओं को मानना है। यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं और उन आशीषों को पाना चाहते हैं, तो निश्चय ही यह असंभव है। आज आपके पास समय है कि अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर अपने मनों को फिराएं, उसकी आज्ञा का पालन करें और उससे प्रेम करें, और निश्चय जाने के परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम आज ही करेगा। हमारे अध्ययन का समय इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु खिलाता भोजन।